अब हम समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेल्फ। समाजीकरण के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें मात्र यही स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों में स्व या आत्मन का विकास कैसे होता है। समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को समझने के पूर्व यह समझ लेना जरूरी है कि सामाजिक आत्मन किसे कहते हैं, और सामाजिक आत्मन को समझने के लिए जैविक आत्मन की अवधारणा को समझना जरूरी है। यहाँ संक्षेप में दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्यतया आत्मन दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला जैविक आत्मन यानी बायोलॉजिकल सेल्फ, और दूसरा सामाजिक आत्मन यानी सोशल सेल्फ। जैविक आत्मन से अभिप्राय नारी या पुरुष, बालक या बुढ़ा, सुंदर या कुरूप, मोटा या दुबला, तेज या भोंदू जैसी जैविक विशेषताओं का बोध होता है। लेकिन सामाजिक आत्मन कहने से यह बोध होता है कि कोई व्यक्ति कितना या किस स्तर का सामाजिक प्राणी है। इससे उसके सामाजिकृत यानी सोशलाइज्ड होने के स्तर का बोध होता है। लेस्ली एवं उनके सहयोगियों ने सामाजिक आत्मन को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। द सोशल सेल्फ कंसिस्ट ऑफ द टोटल पैटर्न्स ऑफ एटीट्यूड्स एंड जजमेंट्स विच द इंडिविजुअल मेक्स ऑफ सेल्फ एज एन ऑर्गेनिज्म एंड एज ए सोशल पर्सन। समाजीकरण के मुख्यतः चार सिद्धांत हैं। इन चारों सिद्धांतों के द्वारा यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि व्यक्तियों में सामाजिक आत्मन का विकास कैसे होता है। पर इन चारों में कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, सभी में कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। यहां हम बारी बारी से उन चारों सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। समाजीकरण के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। वियना के महान चिकित्सक सिगमंड फ्रायड, जिनका समय 1856 से 1939 तक था, ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अपने विचारों से कला, साहित्य, दर्शन एवं सामाजिक विज्ञानों को इतना अधिक प्रभावित किया कि विश्व स्तर पर इनके विचारों पर बहस छिड़ गई। उनके विभिन्न विचारों में एक प्रमुख विचार व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है, जो समाजीकरण से सीधे ढंग से जुड़ा हुआ है। फ्रायड ने आत्मन को यानी सेल्फ को तीन खंडों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार आत्मन के अंतर्गत सुप्त वासना या इदम यानी इड, अहम यानी ईगो, और प्राहम यानी सुपर ईगो पाया जाता है। सुप्त वासना एक अचेतन अवस्था है जो व्यक्तियों को सहजात इच्छाओं यानी इंस्ट्रक्टिव डिजायर, विशेषकर वासना एवं आक्रमण का बोध कराता है। यह व्यक्तियों में एक प्रकार की भूख है जो उसे विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करती रहती है। अहम की उत्पत्ति इसी इदम पर नियंत्रण रखने के लिए हुई है। पराहम वह है जो व्यक्तियों में सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के रूप में व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, और वह इसे समाज से सीखता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुप्तावासना और पराहम के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। सुप्तावासना हमेशा व्यक्ति को विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती रहती है। इस अवस्था में पराहम व्यक्ति को ऊंची नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। इस परिस्थिति में अहम दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। अहम का कार्य एक बीच का रास्ता खोजकर इच्छा की पूर्ति करना है, जिसे फ्रायड ने इदम कहा है। इसी को कूली ने बुनियादी मानव स्वभाव यानी ओरिजिनल ह्यूमन नेचर, एवं मीड ने मैं यानी आई कहा है। जिसे फ्रायड ने पराहम कहा है, उसी को मीड ने मुझे कहा है। पर फ्रायड का विचार इन दो विद्वानों से इस रूप में भिन्न है कि उनके अनुसार लगभग 6 साल की अवस्था में बच्चों का व्यक्तित्व स्थिर हो जाता है। इसके अहम का उसके अहम का विकास इतना हो जाता है कि आगे परिवर्तन की संभावना कम रहती है। फ्रायड के इस विचार को शायद ही कोई सामाजिक वैज्ञानिक आज स्वीकार करता है। फ्रायड का विचार था कि एक शिशु के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं या इच्छाएं होती हैं जिन्हें आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। यह बच्चों के लिए एक बहुत ही वेदनापूर्ण प्रक्रिया है। एक शिशु को मात्र भोजन और पेय पदार्थों की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके अंतर्गत काम विषयक भावना यानी इरोटिक फीलिंग्स भी पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि युवकों की तरह उसमें यौन भावना होती है, पर उसमें कोई संदेह नहीं है कि वह यौन भावना की प्रारंभिक अवस्था है। इस भावना की संतुष्टि माँ की गोद में जाने से लेकर अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्यार और आलिंगन से भी होती है। बच्चों का जैसे जैसे विकास होता है, वह इस भावना पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, जो मस्तिष्क में एक दमित भावना की तरह रहता है। इस तरह की प्रवृत्ति को उन्होंने काम लिप्सा यानी लिबिडो की संज्ञा दी है, और यही काम प्रवृत्ति उसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करती रहती है। समाज काम विषयक भावना को सृजनात्मक कार्यों की ओर दिशा प्रदान करने की कोशिश करता है। इसी से विभिन्न प्रकार की विधाओं, कलाओं, वैज्ञानिक खोजों एवं साहित्य का विकास होता है। इसे फ्रायड ने उधर्वपातन या उदातीकरण की प्रक्रिया कहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उधर्वपातन संभव नहीं हो पाता है। फ्रायड ने बताया है कि 4 या 5 साल के बीच बच्चा अपने माता पिता से अलग होने की कोशिश करता है, एक नए सामाजिक परिवेश में धीरे धीरे दाखिल होता है, जहां उसके माता पिता के अलावा क्रीड़ा मित्र, विद्यालय के सहपाठी एवं अड़ोस पड़ोस के बच्चे होते हैं। इस काल को उन्होंने मातृरति या ऑडिपल स्टेज कहा है। जीवन के इस चरण में बालकों को यौन स्तर पर माता से लगाव बढ़ने लगता है, लेकिन इस भावना को वह यथासंभव दबाने की कोशिश करता है, और इसी दमित भावना के कारण बाद में अपने से विपरीत लिंग के लोगों के प्रति उसमें धीरे धीरे लगाव बढ़ने लगता है। लड़कियों में इस प्रकार की भावना पिता के संदर्भ में देखने को मिलती है, लेकिन अपने माता पिता के बीच निकट संबंधों को देखकर वह इस भावना को दबाती है। इसे पितृरति या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसी दो प्रकार की यौन प्रवृत्तियां बालकों को चेतन एवं अचेतन ढंग से कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं, और इसी यौन संबंधी प्रवृत्ति के प्रभाव में व्यक्तित्व का क्रमशः विकास होता है। फ्रायड के इस विचार की काफी आलोचना हुई है। उन्होंने जीवन में यौन पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही बल दिया है। व्यक्तित्व के विकास में काम प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, ऐसा तमाम मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि शिशु के अंतर्गत भी काम विषयक भावना या इरोटिक फीलिंग्स पाई जाती है। आलोचकों का कहना है कि फ्रायड का यह विचार मुख्य रूप से बालकों एवं पुरुषों के अध्ययन पर आधारित था, लेकिन उन्होंने अपने सीमित अनुभवों के आधार पर बालिकाओं के बारे में यौन संबंधी विचार व्यक्त करने का प्रयास किया जो वैज्ञानिक नहीं है। अब हम दूसरे सिद्धांत कूली के सिद्धांत का चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ चार्ल्स हर्टन कूली। अमेरिकन समाजशास्त्री कूली, जिनका समय 1864 से 1929 तक था, ने अपने पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कैसे कोई जैविक प्राणी यानी बायोलॉजिकल बींग्स सामाजिक प्राणी यानी सोशल बींग बनता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही उनके सिद्धांत का प्रमुख बिंदु है। कूली का कहना है कि सेल्फ यानी आत्मन का विकास समाज में होता है। समाज और आत्मन एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न। आत्मन का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है। इसका विकास समाज के संसर्ग में ही संभव है। उन्होंने बताया है कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस का विकास होने लगता है। उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया है। उनके समय में सामाजिक विज्ञान में कोई अनुसंधान होता भी नहीं था। गिडेंस ने 1993 में कहा कि उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन अपने बच्चों के विकास की प्रक्रिया का अवलोकन के आधार पर किया है। बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं और इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण यानी सोशल लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत दिया है। इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लेस्ली एवं उनके सहयोगियों ने कहा है, द सोशल लुकिंग ग्लास इज द ग्रुप और सोसाइटी इन विच पर्संस इमेजिन हाउ अदर्स सी देम। इस सिद्धांत की प्रथम चर्चा उनकी कृति ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में देखने को मिलती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कूली का आत्मन यानी सेल्फ के विकास का विचार उनके पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के सामाजिक आत्मन यानी सोशल सेल्फ से मिलता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दर्पण में अपना स्वरूप देखने का प्रयास करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वरूप समाज रूपी दर्पण में देखने का प्रयास करता है। इस देखने की प्रक्रिया में 3 तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहला, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। एवं तीसरा, मैं अपने बारे में कैसा विचार रखता हूँ, अच्छा या बुरा। हर बालक में यह जानने की इच्छा होती है कि परिवार एवं परिवार के बाहर उसे किस रूप में देखा जाता है और उसके आधार पर वह अपने बारे में एक राय बनाता है। यदि लोग यह सोचते हैं कि वह बहुत मेधावी, अनुशासित और व्यवहार कुशल बालक है तो वह अपने बारे में श्रेष्ठता का भाव रखता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई उसे भोंदू, अनुशासनहीन एवं गलत बालक मानता है तो उसके मन में अपने बारे में हीनता का भावना का विकास होता है। समाज किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है और फिर वह व्यक्ति उस संदर्भ में क्या सोचता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। इस क्रिया एवं प्रतिक्रिया के द्वारा व्यक्तियों में आत्मन का विकास होता है। व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों का इसलिए पालन करता है कि समाज उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। कूली का यह विचार जॉर्ज मीट से मिलता जुलता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर ही आचरण करने का प्रयास करता है। यदि उसे यह महसूस होता है कि लोग उसके किसी व्यवहार को अच्छा नहीं समझेंगे तो वह वैसा व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों को ध्यान में रखकर ही कोई आचरण करता है। कोई व्यक्ति अपने बारे में किस प्रकार विचार बनाता है जिसका प्रभाव उसके आचरण एवं व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। इसे बियर स्टेट ने बहुत ही सरल एवं रोचकपूर्ण ढंग से रखा है। उनके इस अवलोकन से कूली के आत्मदर्शन का दर्पण की अवधारणा पर प्रकाश पड़ता है। दस, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। अब हम समाजीकरण के सिद्धांतों में जॉर्ज मीट के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ जॉर्ज एच मीट। जॉर्ज मीट का समय 1863 से 1931 तक था। जॉर्ज मीट फ्रैट के समकालीन विचारक थे। वे बुनियादी तौर पर एक दार्शनिक एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना सारा जीवन अमेरिका में एक शिक्षक के रूप में बिताया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम लिखा, पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा और भाषण के दौरान कहा, उन तमाम विचारों को उनके विद्यार्थियों ने एक साथ जोड़कर उनके नाम से माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का 1934 में एक पुस्तक के रूप में छपवाया, जिस पुस्तक के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विकास संबंधी विचार दुनिया के सामने आया और वह प्रतीकात्मक संचारवाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म के नाम से समाजशास्त्र में प्रचलित हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट मीट फ्रायड के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि शिशु में आत्मन का विकास अनुकरण से होता है, अनुकरण यानी इमिटेशन। शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है वह उन लोगों के व्यवहारों की नकल करने का प्रयास करता है। अनुकरण की भावना के कारण ही बालक अपने माता पिता या दादा दादी की तरह चलने, बोलने, बैठने आदि का प्रयास करता है। बच्चों में अनुकरण की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। छोटी छोटी बच्चियां अपनी माता या दादी के किए गए व्यवहार की नकल करती हैं, कभी उनकी तरह भोजन बनाने का प्रयास करती हैं तो कभी दुल्हन सजाती हैं या तो कभी घर की सफाई करने लगती हैं। इसी नकल के प्रयास से जीवन की बहुत से कार्यों को सीखती हैं और उनके अंदर क्रमशः आत्मन का विकास होने लगता है। मीट का कहना है कि बच्चे एक नवयुवक की भूमिका निभाने की स्थिति में पहुँचें इसके पूर्व उन्हें तीन चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला, प्रारंभिक स्तर, प्रीपरेटरी स्टेज। इस चरण का काल लगभग 1 से 3 वर्षों का होता है। इस अवस्था में बच्चा ठीक से यह नहीं समझता है कि वह आखिर क्या कर रहा है। कभी वह गुड़िया से प्यार करता है तो कभी किसी को मारने के लिए डंडा उठाता है। क्रीड़ा स्तर, प्ले स्टेज। इस अवस्था का काल 3 से 4 साल का है। इस अवस्था में इस बात की थोड़ी जानकारी होने लगती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह जो कुछ भी करता है उसमें संबद्धता नहीं होती है। कभी वह सिपाही बनता है तो कभी वह डकैत या फिर वह कभी डॉक्टर की तरह नकल करने लगता है। तीसरा स्तर, खेल स्तर यानी गेम स्टेज। इस अवस्था का विस्तार 4 से 5 साल या उससे थोड़ा अधिक लंबे समय का होता है। इस चरण में वह घर के बाहर कोई खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। उसके व्यवहार में एक किस्म की संबद्धता का विकास होता है। इस अवस्था में वह अपनी तथा दूसरों की भूमिकाओं को थोड़ा समझने लगता है। मीट ने बताया है कि जब बच्चे दूसरों की नकल करते हैं तो वे इस माध्यम से दूसरों की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, जिसे उन्होंने टेकिंग द रोल ऑफ द अदर कहा है। इस तरह से बच्चों में आत्म चेतना यानी सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है और उस स्थिति में उसके अंतर्गत मैं यानी आई और मुझे यानी मी की धारणा का विकास होता है। मैं से तात्पर्य उस बालक से है जिसका अभी ठीक से सामाजिकरण नहीं हुआ है और जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती हैं, और मुझे वह है जो इस बच्चे यानी मैं के अंतर्गत सामाजिक आत्मन यानी सोशल सेल्फ के रूप में मौजूद विचार सोशल सेल्फ के रूप में मौजूद विचार हैं। बच्चे अपने अंदर उस रूप को झांकने का प्रयास करते हैं जिस रूप को उसके अंतर्गत अन्य लोग देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों के अंतर्गत पहले मैं का विकास होता है और जब मैं दूसरों के संसर्ग में आता है तो वे दूसरों की नज़र में अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बच्चों में आत्म चेतना की क्षमता या मुझे का विकास होता है, जिसे गिडेंस ने डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कहा है। जॉर्ज मीट का विचार है कि बच्चे जब 8 या 9 साल के हो जाते हैं तो वे व्यवस्थित प्रकार के खेलों में भाग लेने लगते हैं और उस समय वे जीवन के मूल्य और नैतिकता की बात सीखने लगते हैं, क्योंकि खेलों के अंतर्गत विभिन्न किस्म के नियम कानून एवं नैतिकता की बातें पाई जाती हैं। इसी स्तर में बच्चे, जैसा कि मीड ने बताया है, समाज के सामान्य मूल्यों, आदर्श, तौर तरीकों और संस्कृति के बारे में सीखने लगते हैं, जिसे उन्होंने व्यापक अन्य यानी जनरलाइज्ड अदर कहा है। इसका विकास रोल टेकिंग एवं रोल प्लेइंग की प्रक्रिया से होता है। बच्चे दूसरों की भूमिका अदा करने की कोशिश करते हैं और इसी माध्यम से वे सामाजिक आचरण के बारे में सीखते हैं। फ्रायड के विचारों की तरह मीट के विचारों की उतनी आलोचना नहीं हुई, बल्कि इस योगदान के लिए मीट की काफ़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने सामाजिक आत्मन के विकास के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किया है उसका सामाजिक विज्ञान पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गिडेंस के अलावा जॉर्ज मीट की आलोचना न होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उन्होंने दुनिया के सामने कोई आश्चर्यजनक बात नहीं रखी, बल्कि सामान्य विचारों को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया। अब हम समाजीकरण के सिद्धांतों में एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ एरिक एच एरिक्सन। फ्रायड के शिष्य होने के नाते एरिक्सन उन्हीं की परंपरा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। स्वाभाविक तौर पर वे फ्रायड के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उनके सिद्धांतों से हटकर उन्होंने व्यक्तित्व के विकास का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। मात्र एरिक्सन ही ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाजीकरण का एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसका संबंध शैशव काल से लेकर बुढ़ापा तक का है। उन्होंने अपने पुस्तक आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस 1968 में यह विचार प्रस्तुत किया कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया 8 स्तरों में गुजरती है। यहाँ संक्षेप में विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा की जा रही है जिससे एरिक्सन के सिद्धांत को समझने में आसानी होगी। एरिक्सन ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत के संबंध में पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति को जीवन में विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और जीवन के प्रत्येक चरण के अलग अलग संकट होते हैं। चूंकि व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के दौरान विभिन्न किस्म के संकटों से गुजरना होता है और उसी संकट के फलस्वरूप नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे व्यक्तित्व का स्वतः विकास होता रहता है। जैसे उन्होंने यह बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को अपने माता पिता से इतना लगाव हो जाता है कि उसके मन में अपने माता पिता के प्रति विश्वास के साथ साथ अविश्वास की भी समस्या खड़ी हो जाती है। विशेषकर माता से बच्चों को इतना अधिक लगाव हो जाता है कि जब कभी वह घर से बाहर अकेली जाती है तो बच्चों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उसकी माँ फिर वापस घर लौट करके आएगी। अतः माँ के साथ जाने के लिए बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माता पिता के लाड प्यार के कारण उसे ऐसा लगता है शायद वे उसे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों में स्वतंत्र होने का संकट उत्पन्न हो जाता है। जहाँ तक संभव होता है वह माता पिता के नियंत्रण से आज़ाद होने की कोशिश करता है। जब वह 4-5 साल का हो जाता है तो वह थोड़ा उद्यमी होने का प्रयास करता है, विभिन्न किस्म के नए नए काम करने लगता है। इस अवस्था में उसके सामने एक नए प्रकार का मनोवैज्ञानिक संकट उभर कर आता है। कभी कभी बच्चे इस उभय संकट में पड़ जाते हैं कि जिस काम को करने जा रहा है क्या उसमें वह सफल होगा। इस प्रकार की विभिन्न प्रतिक्रियाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगती हैं और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के अनुरूप वह व्यवहार करने लगता है। यह स्थिति समाजीकरण के चौथे स्तर तक बनी रहती है और इस अवस्था का विस्तार लगभग 12 वर्षों तक होता है। इरिक्सन का कहना है कि पांचवें चरण में नवयुवकों के सामने यह संकट उत्पन्न होता है कि जो वह हैं क्या उसका उसी रूप में समाज में पहचान हो रहा है या नहीं। वह जो हैं उसका उसी रूप में पहचान हो इसके लिए उसे जीवन में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक आचरण करने होते हैं। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। छठे चरण में जब नवयुवकों की अपने माता पिता से दूरी बढ़ जाती है तो उसके जीवन में एक नए प्रकार का संकट उत्पन्न होता है। वह संकट है आत्मीयता यानी इंटीमेसी की कमी का। व्यक्ति विवाह के माध्यम से एक नए परिवार की स्थापना करता है और आत्मीयता की कमी के संकट से बाहर निकलने की चेष्टा करता है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जब वह सातवें चरण में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में एक दूसरा संकट उत्पन्न हो जाता है। वह है उत्पादकता यानी जनरेटिविटी की कमी। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्तियों को इस बात की चिंता होने लगती है कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है। जो लोग निसंतान रह जाते हैं उनके सामने एक अलग किस्म का संकट आता है। उनको जीवन में बिल्कुल सूना सूना लगता है और वह उसी के अनुरूप आचरण करने लगता है। इरिक्सन के अनुसार आत्मन या व्यक्तित्व के विकास का अंतिम चरण बुढ़ापे का है, जो समाजीकरण का 8वां एवं अंतिम चरण है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता है और यह विचार करने लगता है कि वह अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में सफल या असफल रहा है। एरिक्सन का कहना है कि बुढ़ापे की समस्या शारीरिक कमजोरी की उतनी नहीं है जितनी कि इस बात की चिंता की उन्होंने अपने जीवन में कितना अधिक खोया और कितना कम पाया। बूढ़े लोग इस सोच में परेशान रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसे एक बार फिर से सुनिए। बूढ़े लोग इस सोच में परेशान रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था तथा क्या नहीं करना चाहिए था। इस तरह बुढ़ापे तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती ही रहती है। जब तक जीवन है तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ हम एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित समाजीकरण के 8 चरणों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। एक तरफ उम्र और दूसरी तरफ उस उम्र में होने वाला मनोवैज्ञानिक संकट। इन्फेंसी में होने वाला मनोवैज्ञानिक संकट, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अर्ली चाइल्डहुड में होने वाला मनोवैज्ञानिक संकट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। 4 to 5 प्ले स्टेज और इस अवस्था में होने वाला मनोवैज्ञानिक संकट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 6 to 12 स्कूल एज और इसका मनोवैज्ञानिक संकट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यंग एडल्टहुड और इसका मनोवैज्ञानिक संकट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग एडल्टहुड एंड मिडिल एज और इसका मनोवैज्ञानिक संकट, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओल्ड एज और ओल्ड एज का होने वाला मनोवैज्ञानिक संकट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। संक्षेप में एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति शैशवकाल से लेकर बुढ़ापे तक किस प्रकार विभिन्न संकटों से गुजरता है और उन संकटों से अपने जीवन में कैसे सीखता है। मुख्य रूप से समाजीकरण विभिन्न प्रकार के संकटों से उत्पन्न एक सीखने की प्रक्रिया का नाम है। यदि जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं हो तो हमारा जीवन प्रतिक्रिया मुक्त ही नहीं बल्कि समाजीकरण मुक्त भी हो जाएगा। इन्हीं संकटों के समुच्चय को उन्होंने पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस कहकर पुकारा है, जो कि उनके सिद्धांत का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। अब हम समाजीकरण के सिद्धांतों में जीन पियाजे के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जीन पियाजे, जिनका समय 1896 से 1980 तक था, पियाजे ने आजीवन बच्चों के विकास से जुड़े अध्ययनों में अपना समय लगाया। उन्होंने बहुत लोगों के व्यवहार के अध्ययन के बजाय कुछ ही लोगों के व्यवहार के विकास का लंबे समय तक अध्ययन किया। बच्चों के व्यवहार का उन्होंने काफ़ी गहराई से अवलोकन किया और उन्होंने पाया कि बच्चे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निष्क्रिय भाव से ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनका चयन करते हैं और उसको अपने स्तर पर समझने, तौलने या विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। और तभी वह वातावरण में फैले विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। वे मीट के इस विचार से संतुष्ट नहीं थे कि बच्चे निष्क्रिय भाव से अपने आसपास के लोगों के व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। पियाजे ने यह तर्क दिया है कि बच्चे दिमागी तौर पर बहुत सक्रिय होकर अपने आसपास की चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, और यदि उन्हें अपने व्यक्तित्व का एक अंग बनाते हैं माफ करिए और तभी उन्हें अपने व्यक्तित्व का एक अंग बनाते हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरह की प्रक्रिया बच्चों में कई स्तरों से होकर गुजरती है, पर मुख्य रूप से समाजीकरण के चार ही स्तर हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, संवेदी चालक स्तर, सेंसरी मोटर स्टेज। पहले स्तर को उन्होंने संवेदी चालक स्तर कहा है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक चलता है। इस स्तर को उन्होंने संवेदी चालक इसलिए कहा है कि इस अवस्था में बच्चे कुछ छूकर ही वातावरण के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। पहले 4 महीने में वे वह अपने आप को वातावरण से अलग नहीं कर पाता। वह जिस खाट पर सोता है उस पर दाएं बाएं होने से क्यों आवाज होती है, इसकी भी उसे कोई जानकारी नहीं होती है। प्रथम 4 महीने तक अपने आसपास के वातावरण का वह ऐसा अंग होता है कि वातावरण में उसका अस्तित्व अलग है यह उसे अस्पष्ट ही नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति और वस्तु में अंतर समझने लगता है। कुछ हद तक अपने आप को वातावरण से भी भिन्न समझने लगता है। दूसरा स्तर है पूर्व परिचालन स्तर, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्तर की शुरुआत लगभग 2 वर्ष की उम्र में होती है और 7 साल तक चलती है। इस स्तर में भाषा का ज्ञान इतना अधिक हो जाता है कि शब्दों के माध्यम से विचारों का संचार होने लगता है, लेकिन बहुत तरह के संकेतों के माध्यम से भी बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। पियाजे ने इस स्तर को प्री ऑपरेशनल इसलिए कहा है कि इस स्तर में व्यक्ति के मस्तिष्क की क्षमता का उतना विकास नहीं हो पाता। वह विभिन्न प्रकार के विचारों या सूचनाओं को बहुत क्रमबद्ध तरीके से नहीं जोड़ पाता है। यदि वह किसी की बात सुनता है और जब उसे फिर किसी और को कहता है तो वह ठीक से उसी चीज को नहीं रख पाता है। इस स्तर के बच्चे जब कभी भी बात करते हैं तो उसकी बातों में सामंजस्य या संबद्धता की काफी कमी पाई जाती है। पियाजे ने दूसरे स्तर को आत्म केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक स्तर कहा है। बच्चे इस स्तर में हमेशा वातावरण को अपने को केंद्र बिंदु मानकर समझने का प्रयास करते हैं। वह हर चीज का विश्लेषण अपने ही संदर्भ में करने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे कभी कभी कोई पुस्तक या पत्रिका उलटकर किसी चित्र के बारे में अपने माता पिता या दोस्तों से पूछते हैं तो वे यह नहीं सोच पाते हैं कि उत्तरदाता को वह चित्र दिखाई पड़ रहा है या नहीं। वह अकेले देखता है और दूसरों से प्रश्न करता है। पियाजे ने कहा है कि इस अवस्था में बच्चे स्वाभाविक रूप से कुछ ज़्यादा ही आत्म केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक होते हैं। इस प्रवृत्ति को स्वार्थी यानी सेल्फिश होने की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि बच्चों के अंतर्गत जो भावना पाई जाती है उसे ईगो सेंट्रिक कहा जा सकता है, सेल्फिश नहीं। तीसरा, साकार परिचालन स्तर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इस स्तर का काल लगभग 7 से 11 साल का होता है। इस स्तर में बच्चे अमूर्त एवं तार्किक विचारों को समझने लगते हैं, उन्हें सत्य तथा असत्य का थोड़ा ज्ञान होने लगता है, वे आसानी से किसी बात पर बहस करने की स्थिति में हो जाते हैं, वे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से भी अच्छी तरह अवगत हो जाते हैं, और धीरे धीरे इस स्तर में आत्म केंद्रित की भावना का ह्रास होने लगता है और उसकी जगह स्वार्थ परायणता की भावना विकसित होने लगती है। चौथा, अंतःस्राव परिचालन स्तर, हार्मोनल ऑपरेशनल स्टेज। यह नवयुवकों का स्तर है। यह लगभग 11-12 साल के बाद का काल है। इस स्तर में उनके लिए तर्कपूर्ण बातें करना, अमूर्त विचारों को समझना पूरी तरह संभव हो जाता है। कठिन से कठिन गणितीय मसलों को सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं। उन्हें सही और गलत तथ्यों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। वे अपने माता-पिता तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों से काफी स्वतंत्र होने की स्थिति में हो जाते हैं। अपना अधिकांश काम वे स्वयं करने लगते हैं। पियाजे ने बताया है कि प्रथम 3 चरण तो विश्वव्यापी चरण हैं, पर चौथा चरण विश्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है। यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को कहाँ तक शिक्षा मिली है। जहाँ निरक्षरता है, वहाँ स्कूल के माध्यम से होने वाला समाजीकरण स्थिर हो जाता है। मार्गेट डोनाल्डसन 1979 का कहना है कि पियाजे का यह विचार सही नहीं है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हैं। इस प्रकार की भावना बड़ों में पाई जाती है। गिडेंस ने 1993 एवं अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि पियाजे ने अपने सारे विचार एक ही नगर स्विट्जरलैंड के कुछ बच्चों के अध्ययन के आधार पर तमाम बच्चों के बारे में कहने का जोखिम उठाया है। इतने छोटे पैमाने पर अध्ययनों के आधार पर इस ढंग का साधारणीकरण यानी जनरलाइजेशन वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अब हम समाजीकरण से संबंधित कुछ अवधारणाओं पर विचार करेंगे। सम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। समाजीकरण से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने इन अवधारणाओं को समाजीकरण के प्रकार के रूप में प्रस्तुत किया है जो उचित नहीं जचता है। यह इसलिए ठीक नहीं जान पड़ता है कि नकारात्मक समाजीकरण, जिसकी चर्चा नीचे की जाएगी, सही मायने में समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण तो मात्र समाजीकरण होता है, वह न तो सकारात्मक होता है और न ही नकारात्मक। पहला, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग किसी भूमिका को इस उम्मीद में निभाते हैं कि भविष्य में उन्हें कुछ वैसा ही करना है, जैसे छोटे बच्चे कभी सिपाही, कभी सेना का जवान, कभी डॉक्टर का तो कभी शिक्षक का नकल करते हैं। घर में छोटी छोटी बच्चियां अपनी दादी या माँ की नकल उतारती हैं। शायद उसे ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिन दादी या माँ की भूमिका निभानी है। इस अवधारणा का संबंध संदर्भ व्यक्ति यानी रेफरेंस इंडिविजुअल एवं संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप से है। कभी कभी हम उस व्यक्ति या समूह का नकल करते हैं जो हम नहीं हैं, पर वैसा अवश्य बनना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा समाप्त होने के समय कुछ बच्चे कॉलेज के विद्यार्थियों के आचरण का यह सोचकर नकल करते हैं कि उसे भी कॉलेज पहुंचने पर उस ढंग का व्यवहार करना है। यहाँ कॉलेज के विद्यार्थियों को संदर्भ समूह या एवं स्कूल के विद्यार्थियों का पूर्वाभ्यासी व्यवहार, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा जाएगा। ब्रूम एवं सेल्सनी का कहना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना भी एक किस्म का पूर्वाभ्यासी समाजीकरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को भविष्य में एक नई भूमिका के लिए तैयार करता है। दूसरा, प्राथमिक या द्वितीयक समाजीकरण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई शिशु जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जो समाजीकरण परिवार, क्रीड़ा मंडली एवं पड़ोसियों के बीच होता है उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने इसे ही प्रारंभिक समाजीकरण यानी अर्ली सोशलाइजेशन कहा है। शिशु जब नवयुवक हो जाता है तो वह बड़े समाज का सदस्य बन जाता है। प्राथमिक समूह के अलावा बहुत प्रकार के द्वितीयक समूह का भी सदस्य बन जाता है। सीखने का काम इस स्तर पर भी चलता रहता है। महाविद्यालयों में विद्यार्थी बनकर, किसी व्यवसाय का मालिक बनकर या किसी दफ्तर में कर्मचारी बनकर कुछ न कुछ हम अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखते रहते हैं। औरतें माँ, दादी या नानी की भूमिका निभाना सीखती हैं तो पुरुष पिता, पति, दादा या नाना की भूमिका निभाना सीखते हैं। इस स्तर की सीखने की तमाम प्रक्रियाएं द्वितीयक समाजीकरण कही जाती हैं। इसी को मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण यानी लेटर सोशलाइजेशन कहकर पुकारा है। तीसरा, नकारात्मक समाजीकरण यानी निगेटिव सोशलाइजेशन। समाज विरोधी गतिविधियों को सीखना ही नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई का काम छोड़कर पॉकेटमारी, चोरी, डकैती या तस्करी का काम सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाएगा। नकारात्मक समाजीकरण का संबंध ऐसे आचरण से है जो स्थापित सामाजिक नियमों, मूल्यों और प्रतिमानों के प्रतिकूल है। सच कहा जाए तो नकारात्मक समाजीकरण सही मायने में समाजीकरण नहीं है, इसलिए कि समाजीकरण का तात्पर्य केवल समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों व्यवहारों को सीखना है। यह एक अयथार्थ माफ करिए, इसे एक बार फिर से सुनिए। यह एक अयथार्थ नाम यानी मिजोनोमर है, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए कोई उपयुक्त समाजशास्त्रीय शब्द उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी भी स्थिति आती है जब वे समाज के स्वीकृत नियमों का ठीक से आचरण नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है या अपराधी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे पुराने जीवन में वापस लाने का प्रयास किया जाता है। अपराधियों को कैद में रखने के बजाय उसे फिर से समाज में स्थापित करने के लिए समाज के मूल्यों, आदर्शों तथा प्रतिमानों को विभिन्न विधियों के द्वारा सिखाया जाता है, ताकि सामाजिक जीवन में वह वापस आ सके। इस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया का नाम पुनर्समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन है। पुनर्समाजीकरण की प्रक्रिया अपराधियों या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, यह आम लोगों के जीवन में भी संभव है। जैसे यदि कोई भारतीय विदेश में प्रवास करते हैं, तो वे उसी समाज के तौर तरीकों को अपना कर जीने का प्रयास करते हैं। अपने समाज के जीवन मूल्यों को छोड़कर किसी विदेशी सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों को अपनाकर जीने की प्रक्रिया पुनर्समाजीकरण कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत, यदि वे अपने ढंग लौटकर भारतीय परंपराओं के मुताबिक जीने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में विदेशी आदतों एवं परिपाटियों को भुलाकर पुनः भारतीय जीवन की प्रणाली को अपनाते हैं, तो उसे भी पुनर्समाजीकरण कहा जाएगा। इसी आधार पर भारतीय लोगों के द्वारा पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना और पश्चिमीकृत भारतीय लोगों के द्वारा पुनः प्राच्यकरण यानी ओरिएंटलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पुनर्समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन कहा जाएगा। पांचवा, असामाजिकरण यानी डीसोशलाइजेशन। कोई भी समाज नकारात्मक समाजीकरण को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह व्यवस्था विरोधी होता है। समाज में कभी कभी कुछ व्यक्तियों को असामाजिकृत यानी समाज में कभी कभी कुछ व्यक्तियों को असामाजिकृत यानी डिसोशलाइज्ड होने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई भारतीय विदेश जाकर वहां स्थापित होने का प्रयास करते हैं, तो वे अपनी परंपरागत संस्कृति को भूलने का प्रयास करते हैं। नई परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कभी कभी यह जरूरी भी हो जाता है। अपनी संस्कृति की बात को भूलना असामाजिकरण और विदेशी संस्कृति को ग्रहण करना पुनर्समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन कहा जाएगा। उसी प्रकार भारत में रहकर यदि कोई पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसकी अपनी संस्कृति के संदर्भ में उस प्रक्रिया को असामाजिकरण एवं पश्चिमी संस्कृति के संदर्भ में उसे पुनर्समाजीकरण कहा जाएगा। छठा, व्यस्क या बालिक समाजीकरण, एडल्ट सोशलाइजेशन। वयस्क समाजीकरण की प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य वैसे परिवर्तनों से है जो किसी बालिक व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों एवं ज्ञान में होता है। यदि कुछ लोगों के संसर्ग में किसी वयस्क व्यक्ति के धार्मिक या राजनीतिक मनोवृत्तियों में किसी कारणवश परिवर्तन आता है तो उसे वयस्क समाजीकरण कहा जाता है। यह परिवर्तन कभी कभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से भी आता है, जैसे विवाह के बाद लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब वयस्क स्त्री पुरुष स्वयं माता पिता बनने के बाद नए अनुभवों से गुजरते हैं तो उससे भी उनकी मनोवृत्तियों में बदलाव आता है। कभी कभी नौकरी मिलने के बाद लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है। इस ढंग के अनगिनत परिवर्तन वयस्क व्यक्तियों के जीवन में आता रहता है। कोई व्यक्ति वयस्क होने पर अपने पारिवारिक जिम्मेवारी एवं विभिन्न प्रकार के कामकाज, राजनीति इत्यादि के बारे में जो कुछ भी अनुभव एवं ज्ञान हासिल करता है वे तमाम बालिक समाजीकरण यानी एडल्ट सोशलाइजेशन के अंग हैं। सातवां, मत आरोपण यानी ब्रेन वॉशिंग। जब किसी व्यक्ति के विचारों में उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है तो उसे मत आरोपण यानी ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है। साम्यवादी क्रांति के पूर्व चीनी लोक गणराज्य पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में पहली बार बृहद पैमाने पर इस विधि को प्रयोग में लाया गया था। साम्यवादी सरकार ने वैसे लोगों के विचारों में जबरन परिवर्तन लाकर साम्यवादी बनाने की कोशिश की जो साम्यवादी दर्शन के कट्टर विरोधी थे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुराने विचारों की जगह नए विचारों को मस्तिष्क में स्थापित किया जाता है। लोगों को यह सिखाया जाता है कि अब तक जो तुम जानते या करते आए हो वो तमाम चीज़ें गलत हैं और जो तुम्हें बताया जा रहा है मात्र वही सही है, अतः तुम्हें इस नए विचार के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 में काफ़ी अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाया गया था और उन बंदियों को यह समझाया गया कि साम्यवादी दर्शन ही जीवन का सही दर्शन है। ऐसा करने के लिए उन बंदी सिपाहियों को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। जब सिपाहियों को यह लगने लगा कि अब कोरियाई लोगों के चुंगल से निकलना मुश्किल है तो उन लोगों को यह विश्वास दिलाना आसान हो गया कि साम्यवादी दर्शन ही सही जीवन दर्शन है। मत आरोपण के वे दोनों ऐतिहासिक उदाहरण हैं। प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की अक्सर कोशिश की जाती है कि जो लोग व्यवस्था विरोधी हैं उनके विचारों में किसी न किसी तरह परिवर्तन लाकर उसे व्यवस्था के अनुकूल बनाया जाए, और इस तरह की जाने वाली प्रक्रिया मत आरोपण यानी ब्रेन वॉशिंग कहलाती है।